दानियल यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर आकर उसे घेर लिया और यहोवा ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कुछ पात्रों समेत उसके हाथ में कर दिया और वह उन्हें शिनार देश में अपने देवता के भवन में ले आया और उन पात्रों को अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब राजा ने अपने प्रधान खोजे अश्पनज को आज्ञा दी कि इसराइल के लोगों में से कुछ को अर्थात राजकुल के और कुलीनों में से ऐसे युवकों को ले आए जो निर्दोष सुंदर रूप वाले और सब प्रकार की बुद्धि में कुशल हों और ज्ञान समझ और विद्या से संपन्न हों। राजा के महल में खड़े होने और उन्हें कसदियों का साहित्य और भाषा सिखाने में सक्षम। इनमें यहूदा के गोत्र के दानियेल हनन्याह मीशाएल और अजरियाह थे। दानियेल ने निश्चय किया कि वह राजा का भोजन या दाखमधु पीकर स्वयं को अशुद्ध नहीं करेगा। इसलिए उसने खोजों के मुखिया से प्रार्थना की कि वह उसे स्वयं को अशुद्ध न करने दे। जहां तक इन चार युवाओं की बात है, परमेश्वर ने उन्हें सभी साहित्य और ज्ञान में शिक्षा और कौशल दिया और दानियेल को सभी दर्शन और सपनों में समझ थी। नबूकदनेस्सर का कद का सपना। अब नबूकदनेस्सर ने एक सपना देखा जो उसे याद नहीं था, इसलिए उसने अपने बुद्धिमान लोगों को बुलाया और उसे बताया कि उसका सपना क्या था और उसका अर्थ बताएं। ज्योतिषियों ने राजा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो राजा के कहे अनुसार काम कर सके। किसी भी राजा ने, चाहे वह कितना भी महान और शक्तिशाली क्यों न हो, कभी भी किसी जादूगर जादूगर या ज्योतिषी से ऐसी बात नहीं पूछी। राजा जो पूछता है वह भी बहुत है कठिन है। देवताओं के अलावा कोई भी इसे राजा के सामने प्रकट नहीं कर सकता है और वे मनुष्यों के बीच नहीं रहते हैं। इससे राजा इतना क्रोधित और उग्र हो गया कि उसने बेबीलोन के सभी बुद्धिमान लोगों को मार डालने का आदेश दे दिया। बुद्धिमान लोगों को मौत की सजा देने का आदेश जारी किया गया और दानियेल और उसके दोस्तों को मौत की सजा देने के लिए उनकी तलाश करने के लिए लोगों को भेजा गया। परंतु दानियेल ने उससे बुद्धि और चतुराई से बात की। उसने राजा के अधिकारी से पूछा, राजा ने इतना कठोर आदेश क्यों जारी किया? तब अर्योक ने दानियेल को विषय समझाया। इस पर दानियेल राजा के पास गया और समय मांगा ताकि वह उसके स्वप्न का अर्थ बता सके। अगले दिन दानियेल अर्योक के पास गया, जिसे राजा ने बेबीलोन के पंडितों को मार डालने के लिए ठहराया था, और उससे कहा, बेबीलोन के पंडितों को मार न डाल, मुझे राजा के पास ले चल और मैं उसके स्वप्न का फल बताऊंगा। सपना। राजा ने दानियेल से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने स्वप्न में क्या देखा और उसका अर्थ बता सकते हो? दानियेल ने उत्तर दिया, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जादूगर जादूगर या भविष्यवक्ता राजा को उस रहस्य को नहीं समझा सकता जिसके बारे में उसने पूछा है, लेकिन स्वर्ग में एक ईश्वर है जो रहस्यों को प्रकट करता है। हे राजा, आपने देखा और आपके सामने एक बड़ी मूर्ति खड़ी थी, एक विशाल चमकदार मूर्ति, दिखने में अद्भुत। मूर्ति का सिर शुद्ध सोने से बना था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थीं, उसका पेट और जांघें पीतल की थीं, उसके पैर लोहे के थे, उसके पैर आंशिक रूप से लोहे के और आंशिक रूप से पकी हुई मिट्टी के थे। जब आप देख रहे थे तो एक चट्टान को काटा गया था, लेकिन मानव हाथों से नहीं। इसने मूर्ति के लोहे और मिट्टी के पैरों पर प्रहार किया और उन्हें तोड़ दिया। तब लोहा मिट्टी पीतल चांदी और सोना एक ही समय में टुकड़े टुकड़े हो गए और ग्रीष्म ऋतु में खलिहान में भूसी के समान हो गए। हवा उन्हें बिना कोई निशान छोड़े उड़ा ले गई। परंतु जो चट्टान मूर्ति से टकराई वह एक विशाल पर्वत बन गई और सारी पृथ्वी में भर गई। व्याख्या। हे राजा, आप राजाओं के राजा हैं। स्वर्ग के परमेश्वर ने तुम्हें प्रभुता सामर्थ सामर्थ और महिमा दी है। उसने मनुष्य जाति और मैदान के पशुओं और आकाश के पक्षियों को तेरे हाथ में कर दिया है। वे जहां कहीं भी रहते हैं उसने तुझे उन सब पर हाकिम ठहराया है। आप सोने के सिर हैं। तुम्हारे बाद एक और राज्य उदय होगा जो तुमसे छोटा होगा। इसके बाद एक तीसरा राज्य जो पीतल का होगा पूरी पृथ्वी पर शासन करेगा। अंत में एक चौथा राज्य होगा जो लोहे की तरह मजबूत होगा, क्योंकि लोहा हर चीज को तोड़ता और चूर चूर कर देता है, और जैसे लोहा चीजों को टुकड़े टुकड़े कर देता है, वैसे ही यह अन्य सभी को कुचल देगा और तोड़ देगा। जैसा तूने देखा कि पांव और अंगुलियां कुछ पक्की मिट्टी की और कुछ लोहे की बनी हैं, वैसे ही यह राज्य भी बंटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे की कुछ शक्ति होगी, जैसा तूने लोहे को मिट्टी में मिला हुआ देखा। जैसे पैर की उंगलियां कुछ हद तक लोहे की और कुछ हद तक मिट्टी की थीं, उसी तरह यह साम्राज्य कुछ हद तक मजबूत और कुछ हद तक भंगुर होगा। और जैसे तूने लोहे को पकी हुई मिट्टी में मिला हुआ देखा, वैसे ही लोग एक मिश्रण हो जाएंगे और एक न रहेंगे, जैसे लोहा मिट्टी में मिल जाता है। उन राजाओं के समय में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य स्थापित करेगा जो कभी नष्ट न होगा, न ही वह किसी अन्य लोगों के लिए छोड़ा जाएगा। वह उन सभी राज्यों को कुचल देगा और उन्हें समाप्त कर देगा, परंतु वह स्वयं कायम रहेगा हमेशा के लिए। इस प्रकार सोने का सिर बेबीलोन साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता था, चांदी की छाती मीड्स और फारसियों के साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करती थी, कांस्य पेट शक्तिशाली यूनानी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता था, और लोहे और मिट्टी के पैर और पैर रोमन साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे। मानव हाथों से नहीं बनी चट्टान मसीहा, ईश्वर का पुत्र और पृथ्वी पर उसका राज्य, उसका चर्च होगी। सोने की छवि। राजा नबूकदनेस्सर ने 90 फुट ऊंची और 9 फुट चौड़ी सोने की एक मूर्ति बनवाई और उसे बेबीलोन प्रांत के दूरा के मैदान में स्थापित किया। फिर उसने क्षत्रपों, हाकिमों, राज्यपालों, सलाहकारों, कोषाध्यक्षों, न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों और अन्य सभी प्रांतीय अधिकारियों को अपने द्वारा स्थापित की गई मूर्ति के समर्पण के लिए आने के लिए बुलाया। उसने कहा कि जो कोई गिरकर दंडवत नहीं करेगा, उसे तुरंत धधकती भट्टी में डाल दिया जाएगा। हालांकि शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने इनकार कर दिया। नबूकदनेस्सर क्रोध से बहुत क्रोधित हुआ, परंतु उसने उन्हें सोने की मूरत की पूजा करने का एक और अवसर दिया। उन्होंने फिर से यह कहते हुए इनकार कर दिया, यदि हमें धधकती भट्ठी में फेंक दिया जाए तो जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वह हमें इससे बचाने में सक्षम है, और हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी बचाएगा। वह और अधिक क्रोधित हो गया, उनके प्रति उसका दृष्टिकोण बदल गया और उसने उन्हें आग में डालने का आदेश दिया। तब राजा नबूकदनेस्सर चकित होकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपने सलाहकारों से पूछा, क्या वे तीन आदमी नहीं थे जिन्हें हमने बांधकर आग में फेंक दिया था? मैं चार लोगों को आग में चारों ओर घूमते हुए देखता हूँ, बंधन मुक्त और बिना किसी नुकसान के, और चौथा देवता के पुत्र जैसा दिखता है। नबूकदनेस्सर चिल्लाया, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, परमप्रधान परमेश्वर के सेवक, बाहर आओ। यहाँ आओ। उन्होंने देखा कि आग ने उनके शरीर को कुछ हानि नहीं पहुँचाई और न उनके सिर का एक बाल झुलसा, उनके वस्त्र नहीं जले थे और उन पर आग की कोई गंध नहीं थी। तब नबूकदनेस्सर ने कहा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की स्तुति करो जिसने अपना दूत भेजकर अपने दासों को छुड़ाया है। पेड़ का सपना। मैंने एक सपना देखा जिससे मैं डर गया। ये वे दृश्य हैं जो मैंने अपने बिस्तर पर लेटे हुए देखे। मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरे सामने भूमि के बीच में एक वृक्ष खड़ा है। इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। पेड़ बड़ा और मजबूत हो गया और उसकी चोटी आकाश को छूने लगी। यह पृथ्वी के छोर तक दिखाई दे रहा था। मेरे सामने एक दूत, एक पवित्र दूत था जो स्वर्ग से उतर रहा था। उसने ऊंचे शब्द से पुकारा, वृक्ष को काट डालो और उसकी शाखाएं छांट डालो, उसकी पत्तियां तोड़ दो और उसका फल बिखेर दो। पशु उसके नीचे से और पक्षी उसकी डालियों से भाग जाएं। परंतु लोहे और पीतल से बंधा हुआ ठूंठ और उसकी जड़ें भूमि में और मैदान की घास में पड़ी रहें। वह आकाश की ओस से भीगे और पृथ्वी के सब पौधों के बीच पशुओं के संग रहे। उसका मन मनुष्य से बदलकर उसे पशु का मन दे दिया जाए। दानियल कुछ समय के लिए बहुत उलझन में पड़ गया और उसके विचारों ने उसे भयभीत कर दिया। अत राजा ने कहा, बेलतशस्सर, जिसे दानियल के नाम से भी जाना जाता है, स्वप्न या उसके अर्थ से घबराओ मत। व्याख्या, हे राजा, तुम वह पेड़ हो। परमप्रधान ने मेरे प्रभु राजा के विरुद्ध जो आज्ञा दी है वह यह है कि तू प्रजा के बीच से निकाल दिया जाएगा और जंगली पशुओं के संग रहेगा। तुम पशुओं की नाई घास खाओगे और आकाश की ओस से भीगोगे। आपके लिए सात समय बीत जाएंगे जब तक आप यह स्वीकार नहीं कर लेते कि परमप्रधान मनुष्यों के साम्राज्य पर संप्रभु है और जिसे वह चाहता है उसे दे देता है। पेड़ के तने को उसकी जड़ों सहित छोड़ देने की आज्ञा का मतलब है कि जब आप स्वीकार करेंगे कि स्वर्ग शासन करता है तो आपका राज्य आपको वापस मिल जाएगा। इसलिए हे राजा, मेरी सलाह स्वीकार करने में प्रसन्न हो, जो सही है उसे करके अपने पापों को त्यागें और उत्पीड़ितों के प्रति दयालु होकर अपनी दुष्टता को त्यागें। हो सकता है कि तब आपकी समृद्धि बनी रहे। उसने खुद को विनम्र नहीं किया या अपने पापों का त्याग नहीं किया। 12 महीने बाद जब राजा बाबुल के शाही महल की छत पर चल रहा था, उसने कहा, क्या यह वह महान बाबुल नहीं है जिसे मैंने अपने पराक्रम से और अपनी महिमा के लिए शाही निवास के रूप में बनाया है? ये शब्द अभी उसके होठों पर थे ही कि आकाश से आवाज आई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे लिए यह आज्ञा दी गई है कि तेरा राजत्व तुझ से छीन लिया गया है। नबूकदनेस्सर के विषय में जो कहा गया था वह तुरंत पूरा हुआ। उसे देश से निकाल दिया गया। लोग पशुओं की नाई घास खाते थे और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगता था, यहां तक कि उसके बाल उकाब के पंखों के समान और उसके नाखून पक्षी के पंजों के समान बढ़ गए। उस समय 7 वर्ष के अंत में मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि बहाल हो गई। तब मैंने परमप्रधान की स्तुति की, मैंने उसका आदर और महिमा की जो सर्वदा जीवित है। उसी समय जब मेरा विवेक बहाल हुआ, मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा सम्मान और वैभव मुझे वापस मिल गया। मेरे सलाहकारों और सरदारों ने मेरी खोज की और मैं अपने सिंहासन पर पुनः स्थापित हो गया और पहले से भी अधिक महान हो गया। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा की स्तुति, प्रशंसा और महिमा करता हूँ, क्योंकि वह जो कुछ करता है वह ठीक है और उसकी सारी चाल ठीक है। और जो लोग अभिमान से चलते हैं उन्हें वह नम्र कर सकता है। दानियल 4। दीवार पर मानव हस्तलेखन। बेलतशस्सर राजा ने अपने 1000 सरदारों को बड़ा भोज दिया और उनके साथ दाखमधु पिया। वे सोने के प्याले ले आए जो यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर से निकाले गए थे, और राजा और उसके सरदारों, उसकी पत्नियों और उसकी रखेलियों ने उनमें से पिया। जब उन्होंने दाखमधु पिया तो उन्होंने सोने, चांदी, पीतल, लोहे, लकड़ी और पत्थर के देवताओं की स्तुति की। अचानक एक मानव हाथ की उंगलियां प्रकट हुई और शाही महल में दीवट के पास दीवार के प्लास्टर पर कुछ लिखती हुई दिखाई दी। राजा ने हाथ को लिखते हुए देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह इतना भयभीत हो गया कि उसके घुटने आपस में टकरा गए और उसके पैर ढीले पड़ गए। राजा ने जादूगरों, ज्योतिषियों और भविष्यवक्ताओं को बुलवाया और बाबुल के इन पंडितों से कहा, वे उस लेख को पढ़ नहीं सके या राजा को इसका मतलब नहीं बता सके। अत राजा बेलतशस्सर और भी अधिक भयभीत हो गया और उसका चेहरा और अधिक पीला पड़ गया। उसके सरदार चकित थे। दानियल को राजा के सामने लाया गया और राजा, मैंने सुना है कि तू व्याख्या करने और कठिन समस्याओं का समाधान करने में समर्थ है। हे राजा, परमप्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को प्रभुता, महिमा और वैभव दिया। उस ऊंचे स्थान के कारण जो उसने उसे दिया था। सभी लोग और राष्ट्र और हर भाषा के लोग उससे डरते थे और उसका भय मानते थे। परंतु जब उसका हृदय अभिमानी हो गया और अभिमान से कठोर हो गया, तो उसे उसके राज सिंहासन से उतार दिया गया और उसकी महिमा छीन ली गई। उसे लोगों से दूर कर दिया गया और जानवर का दिमाग दे दिया गया। वह जंगली गधों के साथ रहता था और मवेशियों की तरह घास खाता था, और उसका शरीर स्वर्ग की ओस से भीग गया, जब तक कि उसने यह स्वीकार नहीं कर लिया कि परमप्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्यों पर प्रभुता करता है और जिसे चाहता है उस पर राज्य कर देता है। परंतु हे बेलशस्सर, उसके पुत्र, तूने यह सब जानते हुए भी अपने आप को नम्र नहीं किया। तुमने उस परमेश्वर का आदर नहीं किया जो तुम्हारे जीवन और तुम्हारे सारे आचरण को अपने हाथ में रखता है। इसलिए उन्होंने वह हाथ भेजा जिसने शिलालेख लिखा था कि भगवान ने आपके शासनकाल के दिनों को गिन लिया है और इसे समाप्त कर दिया है। ख, आपको तराजू पर तौला गया है और कम पाया गया है, और ग, आपका राज्य विभाजित है और मेदियों को दे दिया गया है, और फारसियों, उसी रात बेबीलोनियों का राजा बेलशस्सर मारा गया और दारा मादी ने राज्य पर कब्जा कर लिया। दानियल को शेरों की मांद में डाला गया। डेरियस ने पूरे राज्य में शासन करने के लिए 120 क्षत्रपों, प्रांतीय राज्यपालों को नियुक्त किया, और उनके ऊपर तीन प्रशासक थे जिनमें से एक दानियल था। क्षत्रपों को उनके प्रति जवाबदेह बनाया गया ताकि राजा को हानि न हो। अब दानियल ने अपने असाधारण गुणों से प्रशासकों और क्षत्रपों के बीच अपनी अलग पहचान बना ली, इसलिए राजा ने उसे पूरे राज्य पर नियुक्त करने की योजना बनाई। अन्य क्षत्रपों ने राजा से एक आदेश जारी करने का अनुरोध किया कि हे राजा, जो कोई भी अगले 30 दिनों के दौरान आपको छोड़कर किसी भी देवता या मनुष्य से प्रार्थना करेगा, उसे शेरों की गुफा में फेंक दिया जाएगा। राजा ने आदेश जारी किया और इसे लिखित रूप में दिया ताकि मेदियों और फारसियों के कानूनों के अनुसार इसे बदला न जा सके। जब दानियल को पता चला कि आदेश प्रकाशित हो गया है, तो वह अपने घर के ऊपरी मंजिल के कमरे में चला गया जहां खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थीं। दिन में 3 बार वह घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करता था और अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता था जैसा कि वह पहले करता था। क्षत्रपों ने राजा से कहा, हे राजा, दानियल जो यहूदा से बंधुओं में से एक है, वह तेरी ओर या तेरे लिखे हुए फरमान की ओर कुछ ध्यान नहीं देता। वह अब भी दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं। जब राजा ने यह सुना तो वह बहुत दुखी हुआ। वह दानियल को बचाने के लिए दृढ़ था और उसे बचाने के लिए सूर्यास्त तक हर संभव प्रयास किया। भोर की पहली किरण होते ही राजा उठा और तेजी से शेरों की मांद की ओर चला गया। जब वह मांद के निकट आया तो उसने दुखित स्वर में दानियल को पुकारा, दानियल, जीवित परमेश्वर के सेवक, क्या तेरा परमेश्वर, जिसकी तू नित्य सेवा करता है, तुझे सिंहों से बचा सका है? दानियल ने उत्तर दिया, हे राजा, सर्वदा जीवित रहो। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजा और उसने सिंहों का मुंह बंद कर दिया। उन्होंने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई क्योंकि मैं उनकी दृष्टि में निर्दोष पाया गया। नहीं हे राजा, मैंने तेरे सामने कभी कोई पाप किया है। दानियल का 4 जानवरों का सपना। रात में मैंने अपने दर्शन में देखा और मेरे सामने स्वर्ग की 4 हवाएं विशाल समुद्र को मथ रही थीं। 4 महान जानवर, प्रत्येक एक दूसरे से भिन्न, समुद्र से बाहर आए। पहला सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के समान थे। मैं तब तक देखता रहा जब तक उसके पंख टूट नहीं गए और वह भूमि पर से उठाया नहीं गया, और वह मनुष्य की नाई 2 पैरों पर खड़ा हो गया और मनुष्य का हृदय उसे दे दिया गया। और मेरे सामने एक दूसरा जानवर था जो भालू जैसा दिखता था। उसका एक किनारा ऊपर उठा हुआ था और उसके मुंह में उसके दांतों के बीच 3 पसलियां थीं। कहा गया, उठो और पेट भर मांस खाओ। उसके बाद मैंने देखा और मेरे सामने एक और जानवर था जो तेंदुए जैसा दिखता था। और उसकी पीठ पर पक्षी के समान चार पंख थे। इस पशु के चार सिर थे और उसे शासन करने का अधिकार दिया गया था। इसके बाद रात को मैंने स्वप्न में देखा तो मेरे सामने एक चौथा राक्षस खड़ा था, जो डरावना और भयानक और बहुत शक्तिशाली था। उसके बड़े बड़े लोहे के दांत थे। इसने अपने शिकारों को कुचल डाला और खा लिया, और जो कुछ बचा था उसे पैरों तले रौंद डाला। वह पिछले सभी जानवरों से भिन्न था और उसके 10 सींग थे। फिर मेरे सामने एक और छोटा सा सींग निकला, जो उनके बीच में निकला, और पहले सींगों में से 3 उसके सामने से उखड़ गए। इस सींग की आंखें मनुष्य की सी थीं और मुंह बड़ाई से बोलता था। जैसा कि मैंने देखा, सिंहासन जगह-जगह स्थापित किए गए थे और प्राचीन काल अनंत भगवान ने अपना स्थान ले लिया था। उसके वस्त्र बर्फ के समान श्वेत थे, उसके सिर के बाल ऊन के समान श्वेत थे। उसका सिंहासन आग से धधक रहा था और उसके सभी पहिए धधक रहे थे। उसके सामने से आग की एक नदी निकलकर बह रही थी। हजारों हजारों लोग उसके पास उपस्थित हुए, 10,000 × 10,000 उसके सामने खड़े थे। दरबार बैठा और किताबें खोली गईं। वहां मेरे सामने मनुष्य के पुत्र जैसा एक व्यक्ति था, जो स्वर्ग के बादलों के साथ आ रहा था। वह प्राचीन काल के पास पहुंचा और उसे उसकी उपस्थिति में ले जाया गया। उसे अधिकार, महिमा और संप्रभु शक्ति दी गई। सभी लोगों, राष्ट्रों और हर भाषा के लोगों ने उसकी पूजा की। उसका प्रभुत्व एक शाश्वत प्रभुत्व है जो नष्ट नहीं होगा, और उसका राज्य ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होगा। व्याख्या: 4 बड़े जानवर 4 राज्य हैं जो पृथ्वी से उभरेंगे, लेकिन परमप्रधान के संत राज्य प्राप्त करेंगे और हमेशा के लिए उसके अधिकारी होंगे। हाँ, हमेशा और हमेशा के लिए। फिर मैंने चौथे जानवर का असली मतलब जानना चाहा, जो अपने लोहे के दांतों और कांसे के पंजों के साथ बाकी सभी जानवरों से अलग और सबसे भयानक था। वह जानवर अपने पीड़ितों को कुचलता और खा जाता था, और जो कुछ बचा था उसे पैरों तले रौंद देता था। मैं उसके सिर पर 10 सींगों के बारे में और दूसरे सींग के बारे में भी जानना चाहता था, जिसके सामने उनमें से 3 गिर गए। वह सींग जो दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावशाली दिखता था और जिसमें आंखें और मुंह था, जो घमंड से बोलता था। जैसा कि मैंने देखा, यह सींग संतों के विरुद्ध युद्ध कर रहा था और उन्हें हरा रहा था, जब तक कि प्राचीन समय में नहीं आया और परमप्रधान के संतों के पक्ष में निर्णय नहीं सुनाया, और वह समय आया जब उन्होंने राज्य पर कब्जा कर लिया। चौथा जानवर एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर प्रकट होगा। वह अन्य सभी राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी को निगल जाएगा, उसे रौंदेगा और चूर चूर कर देगा। 10 सींग 10 राजा हैं जो इस राज्य से आएंगे। उनके बाद एक और राजा उठेगा जो पहले के राजाओं से भिन्न होगा। वह 3 राजाओं को अपने अधीन कर लेगा। वह परमप्रधान के विरुद्ध बोलेगा और उसके संतों पर अत्याचार करेगा और निर्धारित समय और कानूनों को बदलने की कोशिश करेगा। संतों को एक समय, कई समय और आधे समय के लिए उसे सौंप दिया जाएगा, लेकिन अदालत बैठेगी और उसकी शक्ति छीन ली जाएगी और हमेशा के लिए पूरी तरह से नष्ट कर दी जाएगी। तब पूरे स्वर्ग के अधीन राज्यों की संप्रभुता, शक्ति और महानता संतों, परमप्रधान के लोगों को सौंप दी जाएगी। उसका राज्य अनंत राज्य होगा और सभी शासक उसकी पूजा करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। राम के बारे में डेनियल का दृष्टिकोण। मैंने ऊपर देखा और मेरे सामने 2 सींगों वाला एक मेढ़ा नहर के किनारे खड़ा था, और सींग लंबे थे। उनमें से एक सींग दूसरे से अधिक लंबा था, लेकिन बाद में बड़ा हो गया। मैंने मेढ़े को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर बढ़ते हुए देखा। कोई भी जानवर उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था और कोई भी उसकी ताकत से बच नहीं सकता था। उसने जैसा चाहा वैसा किया और महान बन गया। जब मैं इस बारे में सोच रहा था, अचानक एक बकरा पश्चिम से आया, जिसकी आंखों के बीच एक प्रमुख सींग था और वह जमीन को छुए बिना पूरी पृथ्वी को पार कर रहा था। वह उस दो सींग वाले मेढ़े की ओर आया जिसे मैंने नहर के किनारे खड़ा देखा था और बड़े गुस्से से उस पर टूट पड़ा। मैंने देखा कि वह मेढ़े पर तेजी से हमला कर रहा था, और उसके दोनों सींग तोड़ रहा था। मेढ़ा उसके सामने खड़ा होने में असमर्थ था। बकरी ने उसे जमीन पर पटक दिया और रौंद डाला, और कोई भी मेढ़े को उसकी शक्ति से नहीं बचा सका। बकरा बहुत महान हो गया, लेकिन उसकी शक्ति के चरम पर उसका बड़ा सींग टूट गया और उसके स्थान पर स्वर्ग की चारों दिशाओं की ओर चार प्रमुख सींग उग आए। उनमें से एक और सींग निकला, जो शुरू में छोटा था लेकिन दक्षिण और पूर्व की ओर और सुंदर भूमि की ओर बढ़ता गया। वह तब तक बढ़ता गया जब तक वह आकाश की सेना तक नहीं पहुंच गया, और उसने तारों से भरे कुछ मेजबान को पृथ्वी पर फेंक दिया और उन्हें रौंद डाला। इसने स्वयं को मेजबान के राजकुमार के समान महान बनने के लिए स्थापित किया। इससे उसका प्रतिदिन का बलिदान छीन लिया गया और उसके पवित्र स्थान को नीचा कर दिया गया। विद्रोह के कारण यजमान, संतों के और दैनिक बलिदान को इसे सौंप दिया गया। यह सपना पूरा होने में कितना समय लगेगा? दैनिक बलिदान विद्रोह जो उजाड़ने का कारण बनता है, और पवित्र स्थान और मेजबान के आत्मसमर्पण के बारे में सपना जो पैरों से रौंदा जाएगा। उसने मुझसे कहा, इसमें 2300 शामें और सुबह लगेंगी, तब पवित्र स्थान फिर पवित्र किया जाएगा। उसने कहा, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि क्रोध के समय में क्या होगा, क्योंकि यह दर्शन अंत के नियत समय से संबंधित है। जो दो सींग वाला मेढ़ा तुमने देखा वह मादी और फारस के राजाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जबरा बकरा ग्रीस का राजा है और उसकी आंखों के बीच का बड़ा सींग पहला राजा है। टूटे हुए सींग के स्थान पर जो चार सींग हैं, वे चार राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उसके राष्ट्र से उभरेंगे, लेकिन उनमें उतनी शक्ति नहीं होगी। राजा साजिश का स्वामी उठेगा। वह बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, लेकिन अपनी शक्ति से नहीं। वह आश्चर्यजनक विनाश करेगा और वह जो भी करेगा उसमें शक्तिशाली लोगों और पवित्र लोगों को नष्ट कर देगा। समृद्धि के लिए धोखा, और वह खुद को श्रेष्ठ समझेगा। जब वे सुरक्षित महसूस करेंगे तो वह कई लोगों को नष्ट कर देगा और राजकुमारों के खिलाफ अपना रुख अपनाएगा। फिर भी वह नष्ट हो जाएगा, लेकिन शाम और सुबह की दृष्टि से नहीं। जो तुम्हें दिया गया है वह सच है, लेकिन दृष्टि को सील कर दो, क्योंकि यह दूर के भविष्य से संबंधित है। दानियेल की प्रार्थना। दानियेल पवित्र शास्त्र से समझ गया यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को दिया गया था, कि यरूशलेम का उजाड़ 70 वर्ष तक रहेगा। इसलिए मैं प्रभु परमेश्वर की ओर मुड़ा और प्रार्थना और विनती, उपवास, टाट ओढ़कर और राख में उससे विनती की। यहोवा ने हम पर विपत्ति लाने में संकोच नहीं किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जो कुछ करता है उसमें धर्मी है। फिर भी हमने उसकी बात नहीं मानी। अब हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और विनती सुन। अपने निमित्त हे प्रभु, अपने उजाड़ पवित्र स्थान पर कृपा दृष्टि कर। हे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, अपनी आंखें खोलो और उस नगर की वीरानी को देखो जिस पर तुम्हारा नाम है। हम तुझ से इसलिए विनती नहीं करते कि हम धर्मी हैं, परंतु इसलिए कि तेरी बड़ी दया है। हे प्रभु सुनो, हे भगवान क्षमा करें, हे भगवान सुनो और कार्य करो। हे मेरे परमेश्वर, तेरे निमित्त विलंब न कर, क्योंकि तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरा नाम धारण करती है। जब मैं बोल रहा था और प्रार्थना कर रहा था, अपने पाप और अपनी प्रजा इसराइल के पाप को स्वीकार कर रहा था और अपने परमेश्वर यहोवा से उसके पवित्र पर्वत के लिए प्रार्थना कर रहा था, जब मैं प्रार्थना में था, गैब्रियल वह आदमी जिसे मैंने पहले दर्शन में देखा था शाम के यज्ञ के समय तेजी से उड़कर मेरे पास आया। उसने मुझे निर्देश दिया और मुझसे कहा, दानियेल मैं अब तुम्हें अंतर्दृष्टि और समझ देने आया हूँ। आपके लोगों और आपके पवित्र शहर के लिए अपराध को समाप्त करने, पाप को समाप्त करने, दुष्टता का प्रायश्चित करने, शाश्वत धार्मिकता लाने के लिए 77 आदेश दिए गए हैं। यरूशलेम को पुनर्स्थापित करने और पुनर्निर्माण करने का आदेश जारी होने से लेकर अभिषिक्त शासक के आने तक 7 और 62 होंगे। इसे सड़कों और खाई के साथ फिर से बनाया जाएगा, लेकिन मुसीबत के समय में 62-7 के बाद अभिषिक्त व्यक्ति को काट दिया जाएगा और उसके पास कुछ भी नहीं होगा। जो शासक आएगा उसके लोग नगर और पवित्र स्थान को नष्ट कर देंगे। अंत बाढ़ की तरह आएगा, युद्ध अंत तक जारी रहेगा और विनाश का आदेश दिया गया है। वह एक साथ के बदले कई लोगों के साथ एक वाचा की पुष्टि करेगा। 7 के मध्य में वह बलि और चढ़ावा बंद कर देगा और वह मंदिर के एक पंख पर एक घृणित वस्तु स्थापित करेगा जो उजाड़ देती है, जब तक कि जिस अंत की आज्ञा उस पर न आ जाए। लिनन में मनुष्य का दर्शन। जब कुसरू राजा था, मैं महान नदी टाइग्रिस के तट पर खड़ा था। मैंने ऊपर देखा और मेरे सामने एक आदमी था जो मलमल पहने हुए था और उसकी कमर पर बेहतरीन सोने की बेल्ट थी। उसका शरीर क्रिसोलाइट के समान था, उसका चेहरा बिजली के समान था, उसकी आंखें जलती हुई मशालों के समान थीं, उसके हाथ और पैर जले हुए पीतल की चमक के समान थे और उसकी आवाज भीड़ की आवाज के समान थी। इसका संदेश सत्य था और इसका संबंध एक महान युद्ध से था। डरो मत डैनियल। पहले ही दिन से जब तूने समझ प्राप्त करने और अपने परमेश्वर के सामने दीन होने का मन किया, तब से तेरी बातें सुनी गईं और मैं उनका उत्तर देने आया हूँ। मैं तुम्हें यह समझाने आया हूँ कि भविष्य में तुम्हारे लोगों का क्या होगा, क्योंकि यह दृष्टिकोण अभी आने वाले समय से संबंधित है। मेरी ताकत खत्म हो गई है और मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा हूँ। हे परम प्रतिष्ठित पुरुष, मत डर। मैं फारस के हाकिम से लड़ने को लौट आऊंगा और जब मैं जाऊंगा तब यूनान का हाकिम आ जाएगा, परंतु पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि सत्य की पुस्तक में क्या लिखा है। फारस में 3 और राजा प्रकट होंगे और फिर एक चौथा जो अन्य सभी की तुलना में कहीं अधिक अमीर होगा। जब वह अपने धन से शक्ति प्राप्त कर लेगा तो वह सभी को यूनान के राज्य के विरुद्ध भड़का देगा। तब एक शक्तिशाली राजा प्रकट होगा जो बड़ी शक्ति से शासन करेगा और जो चाहे करेगा। उसके प्रकट होने के बाद उसका साम्राज्य टूट जाएगा और स्वर्ग की 4 दिशाओं में विभाजित हो जाएगा। यह उसके वंशजों को नहीं मिलेगा, न ही इसमें वह शक्ति होगी जो उसने प्रयोग की थी, क्योंकि उसका साम्राज्य उखाड़ दिया जाएगा और दूसरों को दे दिया जाएगा। संकलक की टिप्पणी। डैनियल का सपना फारस के राजा साइरस के 3रे वर्ष या 534 ईसा पूर्व में हुआ था, जब उसके पास शासन करने के लिए अभी 4 साल थे और वह 3 में से पहला रहा होगा। उसके बाद के 2 लोग कैम्बिसेस 2 530 से 522 ईसा पूर्व और डेरियस हिस्टास्पेस 522 से 486 ईसा पूर्व होंगे। चौथा ज़ेरक्सस आए 486 से 465 ईसा पूर्व होगा, जो फारसी राजाओं में सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली था, संभवतः एस्तेर की पुस्तक का क्षयर्ष। उसने ग्रीस पर आक्रमण किया लेकिन सलामिस 480 ईसा पूर्व में हार गया। यह किसी भी तरह से फारसी साम्राज्य का अंत नहीं था, बल्कि इसे पतन में डाल दिया और ग्रीस को प्रभुत्व में डाल दिया, जब तक कि अंततः 330 ईसा पूर्व में फारस ग्रीसी राजा अलेक्जेंडर महान के अधीन नहीं हो गया। सिसिल राइट द्वारा डैनियल की पुस्तक से टिप्पणियां समाप्त करें। समय का अंत। उस समय माइकल महान राजकुमार जो आपके लोगों की रक्षा करता है उठेगा। संकट का ऐसा समय आएगा जैसा राष्ट्रों के आरंभ से लेकर उस समय तक कभी नहीं हुआ, परंतु उस समय तेरी प्रजा के जितनों के नाम पुस्तक में लिखे हुए पाए जाएंगे वे छुड़ाए जाएंगे। बहुत से लोग जो भूमि की धूल में सोते हैं जाग उठेंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए, दूसरे लज्जा और अनंत तिरस्कार के लिए। परंतु हे दानियेल, तू पुस्तक के शब्दों को अंत के समय तक बंद करके रखना। मेरे सामने दो अन्य लोग खड़े थे, एक नदी के इस तट पर और एक विपरीत तट पर। उनमें से एक ने उस सन के कपड़े पहने हुए मनुष्य से, जो नदी के जल के ऊपर था, कहा, ये आश्चर्यजनक बातें पूरी होने में कितना समय लगेगा? यह एक समय, कई बार और आधे समय के लिए होगा। जब पवित्र लोगों की शक्ति अंततः टूट जाएगी, तो ये सभी चीजें पूरी हो जाएंगी, मैंने सुना, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने पूछा, महाराज, इस सब का परिणाम क्या होगा? उसने उत्तर दिया, अपने रास्ते जाओ दानियल, क्योंकि शब्द अंत के समय तक बंद और सीलबंद हैं। दानियल के मुख्य बिंदु। दानियल ने स्वयं को अशुद्ध न करने का निश्चय किया। स्वर्ग के परमेश्वर ने राजा को बताया कि चार सांसारिक राज्य होंगे, जिनकी शुरुआत बेबीलोन से होगी। चौथे राज्य के दौरान स्वर्ग का परमेश्वर अपना आध्यात्मिक राज्य स्थापित करेगा, जो कभी नष्ट नहीं होगा। कोई हमेशा अपनी रक्षा या सुरक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकता, लेकिन भगवान ऐसा करने में सक्षम है। अपने आप को नम्र करें, जो सही है उसे करके अपने पापों का त्याग करें। यदि आप स्वयं को विनम्र नहीं करते हैं या ईश्वर का सम्मान नहीं करते हैं, तो आप अभावग्रस्त पाए जाएंगे और अपने कार्यों का परिणाम भुगतेंगे। तुम्हें मनुष्य के उन नियमों के आगे नहीं झुकना चाहिए जो परमेश्वर या उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। मनुष्य के पुत्र को अधिकार, महिमा और संप्रभु शक्ति दी गई है और उसका राज्य सदैव बना रहेगा। हमारा प्रभु जो कुछ करता है उसमें धर्मी है। जब परमेश्वर के बच्चों में से कोई समझ हासिल करने का मन बनाता है और परमेश्वर के सामने खुद को विनम्र करता है, तो उसकी बात सुनी जाएगी। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ पाया जाएगा, वह हीवर तक पहुंचाया जाएगा। जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं, उन्हें अनंत दंड के लिए शैतान को सौंप दिया जाएगा। जो पुस्तक में नहीं लिखे गए, उन्हें सदैव के लिए शर्म और तिरस्कार का भागी बना दिया जाएगा। फिर जब कोई समझ प्राप्त करने और अपने परमेश्वर के सामने दीन होने का मन करता है, तो तेरी बातें सुनी जाती हैं।